नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक समझौता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौता नहीं होने पर चीन को 155% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। रिजर्व बैंक ने कहा, अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत उच्च विकास दर दर्ज करने के लिए तैयार। वैश्विक नेताओं ने दीपावली पर शुभकामनाएं दी और भारत ने बहरीन में एशियाई युवा खेलों में कुश्ती की कुराश स्पर्धा में 2 और पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच व्हाइट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इन समझौतों को औपचारिक रूप दिया गया। ये समझौते महीनों की बातचीत के बाद हुए हैं और इनका उद्देश्य दोनों सहयोगियों के बीच आपूर्ति श्रृंखला, सुरक्षा, ऊर्जा स्वतंत्रता और सैन्य सहयोग को बढ़ाना है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के समझौते पर 4-5 महीने से काम चल रहा था। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक तथ्य पत्र में महत्वपूर्ण खनिजों के ढांचे को वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला सहयोग के लिए एक आदर्श बताया गया है। दस्तावेज के अनुसार दोनों सरकारें महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी परियोजनाओं में संयुक्त रूप से 3 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश करेंगी, जिसका अनुमानित वसूली योग्य मूल्य 53 अरब डॉलर है। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 8 अरब 50 लाख अमरीकी डॉलर की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। दोनों पक्ष अगले 6 महीनों में शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए 1 अरब डॉलर का संयुक्त निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम दुर्लभ मृदा पदार्थों से बने चुंबकों के निर्यात पर चीन द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चाहत कुमारी।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने अमरीका के साथ नया व्यापार समझौता नहीं किया तो 1 नवंबर से वो उस पर 155% तक टैरिफ लगा देगा।
व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन पहले ही अमरीका को अपने निर्यात पर 55% शुल्क दे रहा है और अगर कोई समझौता नहीं होता है तो ये दर और तेजी से बढ़ सकती है। श्री ट्रंप ने कहा कि व्यापारिक तनाव के बीच चीन अमेरिका का बेहद सम्मान करते हुए उसे बहुत भुगतान कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो चीन जो अभी 55% टैरिफ दे रहा है उस पर 1 नवंबर से 155% टैरिफ लगने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलने के कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए निष्पक्ष और पारस्परिक लाभकारी परिणाम की आशा व्यक्त की। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर में चीन से आने वाली वस्तुओं पर मौजूदा शुल्क के अलावा अगले महीने की 1 तारीख से 100% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की थी। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के अस्थायी वित्त पोषण विधेयक को 50 के मुकाबले 43 मतों से एक बार फिर आगे बढ़ने से रोक दिया है।
अमेरिका में शटडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी को लेकर दोनों दलों के बीच गतिरोध जारी है। इसका असर संघीय कर्मचारियों पर पड़ रहा है। सीनेट के कर्मचारियों को बताया गया है कि उन्हें शेष शटडाउन अवधि के लिए वेतन नहीं दिया जाएगा और अमेरिकी परमाणु भंडार की देखरेख करने वाली संघीय एजेंसी ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। ये विधेयक अब तक हर प्रयास में 60 मतों की सीमा तक पहुंचने में विफल रहा है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अगली बार परिणाम अलग होंगे। बहुमत नेता जॉन थून चाहते हैं कि सीनेट शटडाउन के दौरान काम कर रहे संघीय कर्मचारियों को वेतन देने वाले विधेयक पर मतदान करे। सदन में अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफरीज ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन नहीं करते क्योंकि ये एक राजनीतिक चाल लगती है कि किस कर्मचारी को वेतन दिया जाए। उम्मीद है कि सीनेट में सरकार को दोबारा खोलने के विधेयक पर कल मतदान होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
अमेरिका की गृहमंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से देश भर में 4,80,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। नोएम ने कहा कि इनमें से 70% लोगों पर आपराधिक आरोप हैं। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी से अब तक 20 लाख अवैध अप्रवासी अमरीका छोड़ चुके हैं। 250 से भी कम दिन में लगभग 16 लाख प्रवासी स्वेच्छा से, जबकि 4 लाख से अधिक औपचारिक रूप से निर्वासित किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि यदि हमास इसराइल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे मिटा दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि वो फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को युद्धविराम का सम्मान करने का मौका देंगे। उन्होंने कल व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की मेजबानी के दौरान पत्रकारों से ये बात कही। ट्रंप ने उग्रवादी समूह को, प्रतिद्वंदियों और कथित सहयोगियों को सार्वजनिक फांसी रोकने की भी चेतावनी दी। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमरीकी सेना हमास के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अनिश्चित बाहरी वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है और उच्च वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। आरबीआई के अक्टूबर बुलेटिन में कल कहा गया कि क्षमता उपयोग और घरेलू मांग के संकेतकों ने सुधार के संकेत दिए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि संकेतक शहरी मांग में सुधार और ग्रामीण मांग में मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रा स्फीति सितंबर में तेजी से कम हुई, जो जून 2017 के बाद से सबसे कम है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रा स्फीति में नरमी ने मौद्रिक नीति को मूल्य स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य से समझौता किए बिना विकास को समर्थन देने के लिए ज्यादा संभावना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमानों को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने भी वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमानों को 40 आधार अंकों से संशोधित कर 6.3% से 6.7% कर दिया है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
भारत में हर्षोल्लास के साथ प्रकाश पर्व दीपावली मनाए जाने के बीच दुनिया भर के नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस त्यौहार को मनाने वाले सभी अमरीकियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का स्मरण कराता है। अमरीकी संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक काश पटेल ने भी दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस उत्सव पर शुभकामनाएं दी हैं। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने कहा कि दीपावली आरंभ से ही भारत में उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए भारत और इसराइल के बीच प्रगाढ़ संबंधों का उल्लेख किया। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल की अपनी भारत यात्रा का स्मरण किया, जहां उन्होंने मुंबई में भारत के प्रति अनुराग और नए संबंधों के प्रतीक के रूप में एक दिया जलाया था। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने वैश्विक सद्भावना में स्वर मिलाकर अपने संदेश में प्रकाश सदैव कायम रहे की कामना की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के नेताओं ने भी दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और जापान इनोवेशन पार्टी GIP ने एक गठबंधन समझौते को औपचारिक रूप दे दिया है। इससे LDP नेता साने ताकाइची के देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। बहरीन में एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कुश्ती के एक पारंपरिक स्वरूप कुराश में 2 और पदक जीत लिए हैं। इससे खेलों में पदकों की संख्या भारत की बढ़कर 3 हो गई है। 31 अक्टूबर को संपन्न हो रहे एशियन यूथ गेम्स में कुल 222 भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक समझौता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौता नहीं होने पर चीन को 155% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। रिजर्व बैंक ने कहा अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत, उच्च विकास दर दर्ज करने के लिए तैयार। वैश्विक नेताओं ने दीपावली पर शुभकामनाएं दी हैं और भारत ने बहरीन में एशिया युवा खेलों में कुश्ती की कुराश स्पर्धा में 2 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।